प्रतितान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्व्रतः। एक समय की बात है, पहले पांडव नहीं थे कि बात समाचार पहुंचा था तो कृष्ण और बलराम गए थे कुंती माता को सांत्वना देने। अब खुशखबरी, सभी ने स्वागत किया। हाँ हाँ, पांडव तो है, पांडव तो रक्षित है, कृष्ण पालिता। तो उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो उन पांडवों को भगवान मिलने गए, इंद्रप्रस्थ गए, युयुधानादि भी सह या भीरव्रतः सात्यकी आदि कई अन्य पार्षद भी साथ में थे। इंद्रप्रस्थ मतलब अभी नई दिल्ली इंद्रप्रस्थ, वह पांडवों का किला भी है, एक विशेष आकर्षण, टूरिस्ट स्पॉट दिल्ली का है पांडवों का किला, उसका चिड़िया घर भी कहते हैं। चिड़िया क्योंकि वह चिड़िया घर है, प्रदर्शनी। कुंती का मंदिर भी है उस किले में, जमुना तट पर ही है वो किला, लाल किले से दूर नहीं है। वहां गए पुरुषोत्तमः। कौन गए? पुरुषोत्तमः, पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम। आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वृंदावन से भी उस पार, वृंदावन के कृष्ण, द्वारका से अब इंद्रप्रस्थ गए, वृंदावन से भी और उत्तर दिशा में। युधिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवंदनम्। जब पहुंचते हैं तो देखिए आदर्श, सारे नियमों का, धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं प्रभु स्वयं, सारे शिष्टाचार के नियम सिखा रहे हैं अपने आचरण से। जैसे पांडवों को मिले तो युधिष्ठिर और भीम के चरणों का स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हैं। पांच पांडव हैं तो पहले दो, बीच में दो और छोटे दो। देखिए कैसे आदान प्रदान, शिष्टाचार, व्यवहार प्रभु का है। पादाभिवंदनम कृत्वा, किया किनका, युधिष्ठिर महाराज और भीम का। फाल्गुनम परिरभ्याथ, और फाल्गुन के तो गले लगाए, मित्र है या समकक्ष है दोनों। युधिष्ठिर महाराज भीम तो बड़े भाई है, अर्जुन के भी और कृष्ण के भी एक ही परिवार है। कृष्ण है भाई का पुत्र और युधिष्ठिर महाराज भीम बहन के पुत्र। वसुदेव और कुंती भाई बहन, ये ममेरे और फुफेरे, ऐसा रिश्ता नाता है, भाई है, ममेरे भाई फुफेरे भाई। तो अर्जुन के साथ मैत्री चलती है क्योंकि एक ही उम्र है दोनों की। यमाभ्याम चाभिवंदितः, तो हमारे नकुल और सहदेव वे वंदना करते हैं कृष्ण की, वे दोनों कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनको वंदन कर रहे हैं। तो बड़ों से और अपनी उम्र वालों से और छोटों से कैसे व्यवहार करना है प्रभु ने यहां सिखाया। ये हमारी संस्कृति है, इसको भारतीय संस्कृति, भारतीय, लेकिन ये आधुनिक भारत की संस्कृति की बात नहीं है। आधुनिक भारत की संस्कृति तो लंदन जैसी हुई है, न्यूयॉर्क और हांगकांग की संस्कृति, इसको 5-star होटल कल्चर कहते हैं, ये फैल रहा है। अब पुत्र भी मांगता है, उसको सिगरेट पीनी है तो डैडी से पूछता है, मैचिस है या लाइटर, एंड देन पिताश्री मदद करते हैं पुत्र के सिगरेट को जलाने में, और पुत्र कहता है थैंक यू डैडी। तो यहां तक हम निर्लज्ज हुए हैं, छोटे बड़े का कोई ज्ञान नहीं रहा। परमासन आसीनम कृष्णा कृष्णम अनंदिता नवोढ़ा व्रीडिता किंचित शनैर्येत्य अभिवंदत। और कृष्ण को एक विशेष आसन पर आसीन किए, बिठाए ही थे, बैठ ही रहे थे, बैठे थे। इतने में आ गई कृष्णा, आ गई। कृष्णा कौन है? द्रौपदी आ गई। कृष्ण से द्रौपदी का इतना स्नेह, आध्यात्मिक, अलौकिक, दिव्य प्रेम, उसका नाम ही हुआ कृष्णा। जैसे जमुना का नाम भी कृष्णा है, जमुना का नाम कृष्णा है, और द्रौपदी का नाम कृष्णा है, और अर्जुन का नाम भी एक कृष्ण ही है, कृष्ण होगा, स्त्रीलिंग है तो आ होगा कृष्णा, और पुरुष है तो कृष्ण। आगे चल के हम देखेंगे दो कृष्ण की बात है इसी अध्याय में, दो कृष्णों का है, दो कृष्ण कौन, एक कृष्ण कृष्ण और दूसरे अर्जुन कृष्ण, उनके घनिष्ठता के कारण उनको नाम भी कृष्ण, अर्जुन का एक नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। तो कृष्णा जब प्रभु जी बैठे ही थे आसन पर, इतने में कृष्णा आ गई, नवोढ़ा नव विवाहिता, अभी अभी विवाह हो चुका था, व्रीडिता थोड़ी लजीली, थोड़े लज्जा कर रही थी, जो स्त्री का आभूषण माना गया है। लाज लज्जा ये आभूषण है, ये गुण है स्त्रियों का, ये आभूषण वैसे रक्षा भी करता है स्त्रियों की। शोभा भी देता है, देती है ये लज्जा, ये गुण, और रक्षा भी करता है। तो द्रौपदी में ये गुण है। व्रीडिता, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कैसी कृष्णा, व्रीडिता, नव ओढ़ा, नव विवाहिता, और लज्जा के साथ थोड़ी लाज। शनै एत्य अभिवंदिता, आगे आई और उसने भी प्रणाम किया प्रभु को। और इतने में प्रीथा आ रही थी, कुंती आ रही थी, कुंती माता, कुंती महारानी कृष्ण की वो आ रही थी, तो कृष्ण ने देखा फूफा आ रही है, तो हुआ आसन पर से उतरे और तेजी से आगे बढ़े, और रास्ते में ही कुंती माता को मिले। हाँ, कृष्णा द्रौपदी आ सकती है वहां पर जहां कृष्ण बैठे हैं, लेकिन कृष्ण को तो कुंती माता की ओर जाना होगा, ये पुनः शिष्टाचार की बात है। तो कुंती माता ने कृष्ण को अभिरंभिता, दोनों भुजाओं में धारण किया, आलिंगन दिया, अपना पुत्रवत, अपने भाई का पुत्र है। और एक दूसरों का कुशल मंगल पूछते हैं। द्वारका के निवासी कैसे हैं, आप सभी कैसे हो, सभी भाई परिवार मिलके पूछताछ कर रहे हैं। इस लीला का केंद्र भगवान है, और भगवान और इस लीला का वर्णन भागवतम में है, श्रीमद् भागवत कथा, और ये कथा, ये भागवत भागवत धर्म की स्थापना करता है, भगवान में केंद्र में बिठाता है, सर्वोच्च भगवान। और फिर ये सारे नियम भी, इससे हम जिससे हम सुसंस्कृत होंगे, केवल सुशिक्षित ही नहीं, सुशिक्षित होना एक बात है और सुसंस्कृत होना दूसरी बात है। लोग हाईली एजुकेटेड तो जरूर है, लेकिन कल्चर कहा है, संस्कृति कहा है, धर्म कहा है। इसीलिए धर्म ही न पशु भीर समाना, धर्महीन संस्कृतिहीन व्यक्ति को कहा, वो तो पशु ही है। कैसा पशु? उसके सिंग नहीं है बस, ऊपर या आगे और पीछे पूछ नहीं, इतना ही अंतर है, तो ये तो पशु ही है। कोई कला होनी चाहिए, आध्यात्मिक दिव्य कला, भगवान के प्रसन्नता के लिए सुसंस्कृत कल्चर्ड। तो क्यों आए हो? भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को जब पूछा गया लंदन में, पत्रकार पूछ रहे, स्वामी जी व्हाई हैव यू कम, तो हमारे देश क्यों आए? तो हुआ, स्वामी जी ने कहा, प्रभुपाद कहे, हाँ आप लोग हमारे भारतवर्ष में रहे, कुछ 150-200 साल रहे, और जो जिस चीज को आपने मूल्यवान समझा, ऐसी सारी मूल्यवान वस्तुएं संपत्ति तो आप लूट लाए अपने देश, लेकिन आपने वैसे सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु तो आप पीछे ही छोड़ के आए। उसकी डिलीवरी देने मैं आया हूं। तो पत्रकारों ने पूछा, ऐसी कौन सी आपके देश की संपत्ति है जो हमारे वॉइस रॉयस वगैरह उन्होंने देखा नहीं, या उसकी चोरी नहीं की? तब उत्तर में भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद कहे, हमारे देश की असली संपत्ति तो हमारा धर्म है, हमारे देश की असली संपत्ति तो हमारी संस्कृति है, हमारे देश की असली संपत्ति तो प्रभु का नाम है, गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, और हमारे देश की असली संपत्ति तो है गीता भागवत उपनिषदों का ज्ञान। तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है हमारे देश के। अगर किसी चीज का, वस्तु का वितरण, निर्यात, एक्सपोर्टेशन होना चाहिए तो ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर मंगा लो और कुछ मंगा लो और विद्या, लेकिन ये विद्या, ये धन तो इसी देश की संपत्ति है, वैसे संसार की है, सबका हक है, क्योंकि भगवान की संपत्ति, भगवान की देन है, तो सभी संतानों के लिए है। जैसे गीता का ज्ञान भारतीयों का थोड़े ही है, तो वैसे प्रभुपाद ने इन शब्दों में समझाया उन पत्रकारों को, और यही कार्य वैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जीवन भर किए, इंक्लूडिंग ये श्रीमद् भागवत जो भागवत धर्म का आधार है, इसका भी वितरण किए, गीता और भागवत, जिन ग्रंथों का अनुवाद स्वयं की अंग्रेजी भाषा में, हर श्लोक प्रभुपाद, हर श्लोक संस्कृत का, 18,000 श्लोक का शब्दार्थ और भाषांतर, भावार्थ उन्होंने स्वयं ऐसे 10वें स्कंद तक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद तक अनुवाद किया, और इन ग्रंथों का अब संसार के सभी मुख्य भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। प्रभुपाद चाहते थे भगवान की ओर से, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ओर से, कि ये इस संपत्ति का वितरण होना चाहिए विश्व भर में। तो श्रीमद् भागवत की कथा अब संसार भर में लोग सुन रहे हैं। और नित्यम भागवत सेवया, जो श्रीमद् भागवत का ही नियम है। हम तो यह 7 दिवस की कथा करने बैठे हैं, 6वां दिवस कल, 7वां आप में से कुछ लोग गिनते होंगे। फिर छुट्टी हो गई, फिर हो गई छुट्टी, हमने ड्यूटी निभा ली 7 दिन कथा सुनने की, हो गई छुट्टी। श्रीमद् भागवत कहता है नित्यम भागवत सेवया, नित्यम, नित्यम मतलब साल में एक बार भी तो नित्यम हो ही गया ना। तो कुछ लोग कहता हम लोग तो मंदिर बड़े रेगुलरली जाते हैं, रेगुलर हर जन्माष्टमी को, हर जन्माष्टमी को जाते हैं, और फिर कभी कभी रामनवमी को भी जाते हैं। हम लोग बड़े रेगुलर हैं, रेगुलर हो गए ना, नित्यम हो गया। जैसे वारी भी होती, पंडरपुर की वारी, लोग वारी तो साल में एक बार वारी हो गई, बारंबार वारी मतलब बारंबार, बार बार परत परत। तो प्रभुपाद इस नित्यम भागवत सेवया का ट्रांसलेशन क्या करते हैं, डेली, एवरी डे, हर रोज। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के प्रभुपाद का स्थापित ये जो आंदोलन है, इस हरे कृष्ण आंदोलन के 500 से अधिक मंदिरों में, केंद्रों में एवरी डे, हर रोज भागवत की कथा होती है। संसार के लगभग 100 भाषाओं में अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन हमारे भक्त बैठते हैं। अब कथा में तो हम लोग 1 अध्याय करते हैं, 2 अध्याय सुनाते हैं। प्रभुपाद ने नियम बनाया हर रोज 1 श्लोक। श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक पर व्याख्या होती है हर प्रातःकालीन, ये परिपाटी है। तो विश्व भर में श्रीमद् भागवत का केवल रीडिंग नहीं, स्टडीइंग, रीडिंग एक होता है, स्टडी और होता है। न्यूज़पेपर, ऐसे न्यूज़पेपर का रीडिंग होता है, जैसे हम देखते कभी कभी लोग न्यूज़पेपर का स्टडी करते हैं, स्टडी दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, थोड़ा हेडलाइन देख लिया फेंकना चाहिए, आउट, कचरा। और फिर श्रीमद् भागवत इसका पढ़ाई करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो पुनः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो प्रभु तो हर युग में एक बार आते हैं, दरमियान जो एक अवतार आए दूसरे अवतार की प्रतीक्षा है, तो ये जो काल है आचार्य संभालते हैं, आचार्यगण रक्षा करते धर्म की, भगवान उनको प्रेरित करते हैं, शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, और उसके अनुसार वे धर्म की रक्षा करते हैं। क्योंकि धर्म की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी, धर्म रक्षति रक्षता है क्या, धर्म रक्षति, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में कोई नहीं है आपकी रक्षा करने वाला। पुलिस रक्षा नहीं कर सकता, धर्म रक्षा करता है। न तो राजा रक्षा कर सकता है, वो राजा रक्षा नहीं कर सकता जो धर्महीन है। राम जैसा अगर राज्य कर रहा है, राम राज कर रहा है, राम की ओर से राम का प्रतिनिधि बन के अगर राज्य कर रहा है तो वो राजा हमारी या प्रजा की रक्षा करेगा। तो भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक सफल प्रयास किए धर्म की स्थापना का। और वैसे कलयुग का धर्म है, जैसे सुखदेव गोस्वामी कह के गए हैं, कृते ध्यायतो विष्णु, चार युग है, चार युग में चार प्रधान धर्म या विधिया है, धर्म के विधि विधान। तो सतयुग में ध्यान बताया है, त्रितायाम सतयुग में ध्यान, कृते कृते मतलब सतयुग, कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में ध्यान, त्रेतायुग में, त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेतायुग में यज्ञ होते हैं, ये धर्म है। द्वापारे परिचर्यायाम, द्वापार युग में अर्चना होती है प्रभु की, श्रृंगार होता है, 56 भोग लगते हैं, विशाल मंदिरों का निर्माण होता है, और कलौ तद हरि कीर्तनात। लेकिन कलयुग में तो हरि कीर्तन से भगवत प्राप्ति होती है। कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। मतलब ध्यान से नहीं, यज्ञ से नहीं, उस अर्चना से नहीं, संकीर्तन से भगवत प्राप्ति होगी कलौ इस कलयुग में। पहले पहचानना तो होगा, समझना तो होगा कौन सा धर्म है कलयुग में, कौन सा धर्म है, तभी तो हम फिर धार्मिक बनेंगे, उस धर्म के नियमों का पालन करके। ये कथा भाग नहीं है, ये तो जब इंद्रप्रस्थ में थे प्रभु हमारे, इति वै वार्षिकान मासान, तो वही रहे इंद्रप्रस्थ में, वर्षा काल में वही रहे। क्या ये वर्षा काल का ऋतु 2 महीने का होता है, 2 महीने रहे या फिर 4 महीने रहे, चातुर्मास, अलग अलग बस समझ है, 2 महीने तो जरूर रहे ही वहां। और जब वे इंद्रप्रस्थ में थे तो एकदा, एक समय की बात है, रथम आरुह्य विजयो वानरध्वजम गांडिवम धनुर आदाय तूर्णो चाक्षयसायको। अर्जुन और कृष्ण रथ पर विराजमान होके वन में गए, शिकार करने गए, टहलने गए, त्रुट परितहा परिश्रांतो, तो थोड़े भूखे प्यासे थे परिश्रम से, जमुना अगात जमुना की ओर गए। वहां जाके देखते हैं, या वहां जब गए तो चहकने वाले पंछियों की कलरव भी तो उन्होंने सुनी ही होगी। और जमुना बह रही है, वहां का दृश्य सौंदर्य, और साथ साथ उन्होंने तत्र उपस्पृश्य विशदम पीत्वा वारी महारथो, उन्होंने वहां का स्वच्छ जल पिया, जमुना का स्वच्छ जल पिए। बिस्लरी बॉटल नहीं लेके गए थे, आवश्यकता ही नहीं थी, भरपेट पिए जल, स्वच्छ जल। अब आप इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है वहां जाके आचमन भी नहीं कर सकते वहां के जल का, करना है तो करो सही लेकिन मरो भी। ऐसी स्थिति है, दिल्ली के निवासियों को स्मरण भी नहीं होता कि हमारी दिल्ली नगरी एक पवित्र नदी के तट पर है। इतने रसायन और प्रदूषण, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का कितना अंतर है देखिए। 5000 वर्ष पूर्व प्यास लगी, सामने जमुना का जल देखा, पिए, कोई सेकंड थॉट, दूसरा विचार ही नहीं, जल है पियो, स्वच्छ जल है, और वैसे भी जमुना का पवित्र जल है। तो यहां कहा है कृष्णो, दोनों कृष्णों ने ददृशतु कन्याम, एक कन्या को, नवयुवती को दोनों कृष्ण ने, मतलब कृष्ण ने और अर्जुन ने देखा। चरंती, वह भ्रमण कर रही थी, और थी कैसी, चारु दर्शनाम, देखने में बड़े सुंदर, अति सुंदर थी। सुद्विजाम, सुंदर दांत वाली, द्विज का, दांत को कहा द्विज, द्विज तो ब्राह्मण भी होता है और द्विज तो पंछी भी होता है, फिर दांत को द्विज क्यों कहा, द्विज मतलब दो बार जो जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, द्विज। दांत कितने बार, पहली बार फिर गिर जाते हैं, पहली बैच फिनिश्ड, और फिर दूसरे आते हैं, फिर वो रह जाते हैं काफी समय के लिए, इसीलिए दांत को द्विज कहा है। सुद्विजाम, सुंदर द्विज, सुंदर दांतों वाली। रुचिरानाम, उसका आनन मुख, रुचिरा बड़ा आकर्षक मुख वाली। पप्रच्च प्रेषिता सख्यः फल्गुनः प्रमदोत्तमाम, वो प्रमदा, वो स्त्री, उत्तम स्त्री, कृष्ण ने कहे जाओ जाओ, अर्जुन जाओ मिलो उस स्त्री से, पूछो वो कौन है, क्या यहां क्यों, क्या कर रही है, क्या मनोरथ है उसका। तो कृष्ण के प्रेरित करने पर अर्जुन जाते हैं। का त्वम कस्यासि, कई सारे प्रश्न है अर्जुन के, तुम कौन हो, किसकी हो, कहां से आई हो। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम, लगता है कि तुम पति की खोज में हो। सर्वम कथय शोभने, हे शोभने, ओ सुंदर युवती, सर्वम कथय, यहां कोई जो भी है सच सच कहो, निसंकोच कहो। तो वो युवती ये रुचि रानना थी, कौन? कालिंदी थी, कालिंदी। जमुना नदी ही थी, जमुना नदी रूप धारण, जमुना का रूप अपना रूप है, जमुना का अपना रूप है, सरस्वती का अपना रूप है, रूपवान। कहते अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति। हा हा हा, पति तो जरूर चाहिए, पति की खोज में जरूर मैं हूं। मैं हूं सवितुर दुहिता, मैं सूर्य की पुत्री हूं, इसलिए मेरा नाम सूर्य कन्या भी है। वैसे मेरे नाम 1000 नाम है, जमुना के 1000 नाम है, जमुना सहस्र नाम आप पढ़ सकते हो, जैसे विष्णु सहस्र नाम, गौरांग सहस्र नाम, ऐसे कई सहस्र नाम प्रसिद्ध है, उसमें जमुना के 1000 नाम। तो जमुना है सूर्य की पुत्री, और सूर्य के पुत्र है यमराज। यम और यमी, यम और यमी कहते हैं, यमराज की बहन को यमी भी कहते हैं। जैसे किसकी बहन को, कौन और है, पूतना, उनका भी नाम है ना, बका और बकी, यस, बकासुर की बहन है बकी, पूतना हुई, बक बकी, क्रिप क्रिपी, तो यम यमी, ये बहनों के नाम। तो वृंदा मथुरा में वैसे यमराज, यम और यमी, यमराज और जमुना का मंदिर भी है। तो कहते हाँ मैं तो सूर्य देवता की पुत्री हूं। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमास्थितः, मैंने विष्णु को वर लिया है, मेरा कभी विवाह होगा तो विष्णु से ही होगा, और इसीलिए मैं बड़ी कड़ी तपस्या कर रही हूं। नान्यम पतिम व्रणे वीर तम ऋते श्री निकेतनम, ऋते इनके अतिरिक्त, किनके अतिरिक्त, श्री निकेतन के अतिरिक्त और किसी को पति के रूप में मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तुष्यताम मे स भगवान मुकुंदो अनाथ संश्रय, जो अनाथों के आश्रय दाता है, तो मैं भी अनाथ समझती हूं अपने को, तो उस मुकुंद का आश्रय भगवान करे मुझसे प्रसन्न हो और मुझे अपने चरणों का आश्रय दे, पति के रूप में, पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करे। कालिंदी इति समाख्याता वसामी जमुना जले, मुझे कालिंदी भी कहते हैं, कालिंदी एक इस नाम से मैं विख्यात हूं, और यही जमुना के जल में ही मैं निवास करती हूं। निर्मिते भवने पित्रा, मेरे पिता श्री सूर्य ने मेरे लिए एक भवन, विशाल भवन बनाया है जमुना में, और वहां मैं तब तक रहूंगी यावत अच्युत दर्शनम, जब तक अच्युत का दर्शन नहीं होगा, मुकुंद का दर्शन नहीं होगा, जब तक वे मेरा पानी ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं यही रहूंगी। तथा वदत गुडाकेशो वासुदेवाय सोपिताम। तो गुडाकेश अर्जुन का नाम है, गुडाकेश निद्रा पर जीत है जिसके, वैसे गुडाकेश अर्जुन। तो ये जो पता लगवाया तो लौटे और वासुदेव को सारी खबर दी और फिर और ज्यादा तो कुछ करना नहीं था। रथम आरोप्यत तो बिठा लिए कालिन जी को, बिठा लिए रथ में। धर्मराजम उपागतम और उनका निवास उन दिनों में इंद्रप्रस्थ में ही था। इंद्रप्रस्थ लौटे, यहां लिखा है धर्मराज की ओर, जहां युधिष्ठिर महाराज रहते थे वहां के लिए चल पड़े। तो कालिंदी का पानी ग्रहण स्वजनों के संगति में संपन्न हुआ। परमानंदम स्वानाम परम मंगलम। विवाह योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र ये सब देखा गया था, उसके अनुसार विवाह संपन्न हुआ। अभी मित्रबिंद कुछ वर्णन संक्षिप्त है। मित्रबिंद ये दूसरी अब उनकी बनेगी पत्नी। हम लोग अब चार हुए ना, नंबर एक कौन, रुक्मिणी, टू फाइटिंग चल रहा है, कोई कह रहा जाम्बवती, कोई जाम्बवती और सत्यभामा और कालिंदी। अब कितनी बची है, और चार है, आठ में से आठ विशेष प्राणियां हैं। फिर 16,100 की दूसरी लिस्ट है। वो तो होलसेल का है, क्या कहते हैं मैस मैरिज, क्या कहते हैं मैस मैरिज, ऐसा कहते सामूहिक विवाह, सामूहिक। मित्रानुविंदा वावंत्यो दुर्योधन वशानुगो स्वयं वरे स्वभगिनिम कृष्णे सक्ताम निषेधताम। तो इस मित्रविंदा के साथ के विवाह में भी समस्या है। ये उज्जैन की थी अवंतीपुर, प्रभु वहां पहले गए थे। क्यों गए थे, पढ़ाई के लिए गए थे, तब पुनः जाएंगे मित्रविंदा के प्राप्ति के लिए। तो वहां के राजा विंद और अनुविंद और उनकी बहन थी ये मित्रविंदा, ये दो भाई विंद और अनुविंद, इनका कुछ विशेष स्नेह था दुर्योधन के साथ। जैसे रुक्मी का विशेष स्नेह था शिशुपाल के साथ, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था और तैयारी भी हो रही थी, मेरे बहन का विवाह किसके साथ होगा, शिशुपाल के साथ। तो भगवान को जाके रुक्मिणी का हरण करना पड़ा तो यहां पर भी उन्होंने वैसे ही किया। दो भाइयों का विरोध था, लेकिन भगिनी तो कृष्ण ही सक्ताम, उसका तो चित्त तो भगवान में, कृष्ण में। तो प्रभु गए तो ये राजाधि देव्या स्तनयाम मित्रविंदाम पितृष्वसु। तो ये परिवार पारिवारिक संबंध ही था इस मित्रविंदा के परिवार से। तो मित्रविंदा की माता राजाधि देवी, ये कृष्ण के पिता की, मतलब कौन, वसुदेव की बहन, वैसा ही संबंध है। कई बहनें थी वसुदेव की, कई बहनें थी। तो भगवान ऋतवान कृष्णो राजन राज्ञां प्रपश्यताम, तो वह स्वयंवर की तैयारी थी, कई सारे राजा महाराजस एकत्रित हुए थे। प्रभु गए और प्रसय्य थोड़ा अपना बल का प्रयोग, शक्ति और साथ में युक्ति भी, मित्रविंदा का हरण किए और फिर शहनाई बजी, मंगलवाद्य। अब दूसरा, अब विवाह की बात है, जल्दी करो वाजंत्री, थक गए हमारे सारे, शादी के बाद शादी हो रही। ताई गौर प्रेम नंदे शुभ मंगल सावधा। कल्पना तो कर लेते कि हम भी वहां हैं। लीला का श्रवण वैसे हमें पहुंचा देता है, फिर उस लीला के समय में और हमें ये 5,000 वर्ष का जो काल है ये नहीं रहता, क्योंकि ये लीला नित्य लीला है, ये केवल भूतकाल की बात नहीं है। भगवान की सारी लीलाएं नित्य लीला आज भी विद्यमान है। तो इस लीला में प्रवेश, नित्य लीला प्रविष्ट, जो जीवन मुक्त नित्य मुक्त सिद्ध भक्त ऐसे लीला में प्रवेश करते हैं, ऐसे ऐसे लीलाओं का दर्शन करते हैं, श्रवण श्रवण के उपरांत चिंतन मनन ये दर्शन तक पहुंचाता है। तो नग्न जीती ये कौशल्य अयोध्या की थी, उसके राजा अति धार्मिक, उसके पिता तो बड़े बड़े ही धार्मिक थे। पुत्री का नाम सत्या, दो नाम थे सत्या और नग्न जीती, और उनका संकल्प ये था कि मेरी बेटी का पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से, उस राजा से होगा जो क्या करेगा, सप्त गोवृषान, उसके पास सात वृष बैल थे, बड़े बलवान शक्तिशाली, तीक्ष्ण श्रृंगान, सिंह बड़े तीखे तीक्ष्ण, और उन बैलों को वश में करना कुछ कठिन कार्य नहीं था। तो जो भी व्यक्ति राजा इन सातों बैलों को वश में करेगा, करके नथेगा, रस्सी उनके नाक में और काबू कब्जा करेगा उन बैलों पर, दमन करेगा उन बैलों का, तो उस राजा को, उस व्यक्ति को मेरी पुत्री प्राप्त होगी, पानी ग्रहण मेरी पुत्री का ऐसे व्यक्ति के साथ होगा। ताम श्रुत्वा, ये बात जब सुनी तो ये घोषणा हुई होगी, तो आ गए। ताम श्रुत्वा भगवान सात्वताम पति ही, भगवान आ गए। कैसे भगवान? सात्वताम पति, अपने भक्तों के रक्षक भगवान वहां आ गए। जगाम कौशल्यपुरम सैन्येन महता व्रतः, कौशल्यपुर मत अयोध्या आ गए और साथ में कुछ सेना भी लाए। स कौशल्यपति प्रीतः, जब उस कौशल्य अयोध्या के उस समय के राजा, उन्होंने देखा प्रभु आ रहे तो खड़े उठ खड़े हुए, कुछ भेंट भी दी, सत्कार भी किया और पुत्री, जब पुत्री देख ही रही थी, वरम विलोक्य अभिमतम, पुत्री ने जब देखा कि सत्या ने, या उसका नाम नग्न जीती भी है, जब देखा विलोक्य तो मन ही मन में सोचा बस चकमे, उसकी तीव्र इच्छा हुई, नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम, और ये तो रमापति, रमापति रमा के, लक्ष्मी के पति, करोति सत्या यदि मे धृतो व्रतै, तो आशीर्वाद मांगने लगी विधाता से, प्रभु मैंने कोई व्रत किया है तो अब वो सच होने दो, उसका फल मुझे दीजिए, किस रूप में, रमापति मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो राजा से मुलाकात हुई प्रभु की, तो पूजा अर्चना करने के बाद पूछ रहे हैं, हे नारायण हे जगतपते, आत्मानंदेन पूर्णश करवाणि किम अल्पका, वैसे हम तो तुच्छ है, हम तो तुच्छ है, साधारण है व्यक्ति, और वैसे आप आत्मानंदेन पूर्णश, आत्म, आप तो आत्माराम हो, आप तो अपने में स्वतंत्र और पूर्ण हो, तो भी क्या हम जैसे तुच्छ आपके कोई सेवा कर सकते हैं? तो हुआ इसके जवाब में, मेघ गंभीर या वाचा सस्मितम कुरु नंदन, कुरु नंदन श्री कृष्ण, उनके चेहरे पर हास्य है, मुस्कान है, और मेघ गंभीर या गंभीर वाचा, कैसी, कितनी गंभीर वाचा, जैसे मेघ की गर्जना होती है, डीप वॉइस, भगवान का वॉइस डीप है, भगवान के आवाज में गहराई है, भगवान के तीन बातों में गहराई बताई है, उनका आवाज डीप है, गहराई है आवाज में, और उनकी नाभि है वो भी गहरी है, तालाब जैसे, वहां से कमल का फूल निकला ना, जिस पर जन्मे कौन, ब्रह्मा, तो उनकी नेवल, उनकी नाभि गहरी है और उनकी बुद्धि भी, बुद्धि में भी गहराई है। तो उनकी बुद्धि, उनका स्वर वाणी और उनकी नाभि गहरी है। भगवान के 32 लक्षण भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं, जो महापुरुषों के लक्षण भी कहे जाते हैं। तो उसमें ये इस सूची में ये नाम आए, तीन बात, ये तीन, वो तीन, वो तीन, कौन कौन से अंग लाल है, लाल रंग है, लालिमा है, कौन से कमल जैसे हैं, उनके बाहु कैसे हैं, अजानुलंबित भुजो पहुंचती है, उनके हाथ कहां तक पहुंचते हैं, घुटनों तक पहुंचते हैं। कोई आपके द्वार पर भगवान आया जिसका हाथ कमर तक ही है तो वो भगवान हो सकता है? आप लाथ मार के उसको बाहर कर सकते हैं, अगर भगवान डिक्लेयर कर रहा है। भगवान के लक्षण है, और भगवान की गर्दन भी छोटी बताई, शॉर्ट नेक, ऊंट जैसा लंबा नहीं है, शॉर्ट, और त्रि रेखांक कंठ और तीन रेखाएं हैं भगवान के गले में। उनका नाक ऊंचा है, रेज्ड नोज, ऐसा नहीं चाइनीज ऐसा, चाइनीज। ये सौंदर्य का लक्षण है, इसीलिए पता नहीं चाइना में क्या स्टैंडर्ड है, हमारे देश में लड़की को अधिक दहेज देना पड़ता है अगर नाक अंदर है, पहले नाक ही देखते हैं, नाक कैसा है, नाक कैसा है, बता नाक कैसा है। ये संबंध है, अनजाने हम लोग भगवान के सौंदर्य को स्टैंडर्ड मानते हैं, तो फिर उससे अगर मिलता जुलता है तो हमें भी वो अच्छा लगता है, अंदर से जीवात्मा को। वैसे बद्ध अवस्था में हम लोग आत्मा को भूले हैं, लेकिन संस्कार तो है हम में। भगवान के ओठों में लालिमा है, ओठ लाल है, तो वैसे हमारे ओठ लाल नहीं तो हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं, लाल कर देते, क्योंकि लगता है कि लाल होना मतलब ये स्टैंडर्ड है भगवान के। जो लाल लाल बातें ना, उसमें ओठ लाल होना भगवान के, भगवान के नाखून भी लाल है, ये जो नेल्स है इसमें लालिमा है, तो फिर पुनः हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, नेल पॉलिश। भगवान नाचते तो कब नाचते हैं, रात्रि के समय नृत्य होता है, रास क्रीड़ा, लोग भी कब नाचते हैं, ज्यादातर रात्रि को भी नाचते हैं, रात्रि को भी नाचते हैं, संबंध हो गया ना। इस प्रकार हमारा संबंध है, ज्ञान नहीं भी है, शास्त्र से नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, लेकिन इसी से पता चलता है। विदेश में भी यही, तो हम सभी एक ही भगवान की संतान है। तो मेघ गंभीर या वाचा, मेरे गंभीर वाणी से प्रभु उस कौशल्य अयोध्या नगरी के राजा से कहे, यांचा कवि भीर गर्हिता, वैसे आपने कहा कि कोई आपकी इच्छा है, कुछ आप, क्या हम आपको कुछ दे सकते हैं कुछ, तो कहते वैसे कवि कहते कि ये जो ये मांगना जो है ये इसकी निंदा की है, ये तो तुच्छ बात, हाथ फैलाना हर बात, हाथ फैलाना, जैसे पुनः भारत हाथ फैलाते रहता है, गिव मी दे दो, इससे हम लोग इतने कुविख्यात हुए हैं, कई बार पूछता है कहां से हो आप, ओ फ्रॉम इंडिया, ओ दैट बेगर्स कंट्री, ओ दैट भिखारी देश, ऐसा भी सुनना पड़ता है कि हम लोग मांगने जाते हैं। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मांगने नहीं गए, देने गए। क्योंकि हम समझते ऐसा, हमारी समझ ये, हम क्या दे सकते हैं, हम पाश्चात्य देश को क्या दे सकते हैं, क्या देख समझो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से क्या दे सकते हो आप। जो उत्तर उन्होंने पत्रकार को दिया था, क्यों आए हो स्वामी जी, मैं देने आया हूं, फ्री होम डिलीवरी करने आया हूं, हमारे देश की संपत्ति का वितरण करने आया हूं, जिससे आपका देश लाभान्वित होगा। ये उत्तरदायित्व तो भारत का ही है, ये यांत्रिकी विद्या और औद्योगिकरण और जो टेक्नोलॉजी, ये साइंस और चंद्रमा पर जाने की बात है, ये ठीक है, पाश्चात्य देश उन्होंने ठेका लिया है और उनसे कुछ हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जहां तक धर्म की बात है, ये भारत का ही उत्तरदायित्व है, इसका वितरण करना, इसकी रक्षा करना, इसको समझाना बुझाना सारे विश्व को, इसका दान देना, ज्ञान का दान, सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम दान ज्ञान है। जो ज्ञान देने से क्या होता है, दाने न वर्धते, ज्ञान क्या, दाने न वर्धते, दान देने से बढ़ता है। तो प्रभुपाद सिखाए क्या दे सकते हैं, जिससे संसार के असंख्य लोग अब आभार मान रहे हैं, थैंक यू प्रभुपाद, आभारी है हम आपके, प्रभुपाद ने जो गौरव बढ़ाया है इस भारतवर्ष का, संसार भर में शायद ही किसी ने ऐसा इस प्रकार का गौरव, नहीं तो हम लोग भिखारी तो पुअर हम लेते, अब तक लेते गए हैं, को देना चाहिए। तो ये कृष्ण भी कह रहे हैं, ये जो लेने लेने की जो बात है, ये तो बड़ी निम्न बात है, इसकी निंदा की गई है, विगर्हिता। किंतु तथापि याचे तव सौ हृदेच्छया, मैं आपसे कुछ मैत्री का संबंध प्रस्थापित करना चाहता हूं, जो संभव होगा अगर आप कन्याम त्वदीयाम, आपकी कन्या का दान अगर कर सकते हो, अपनी पुत्री को दे सकते हो, तो हमारा संबंध बना रहेगा। तो ये विचार व्यक्त किए, तो फिर राजा ने कहा जी हाँ हाँ, लेकिन शर्त है, तो शर्त बताई गई। तो भगवान तैयार हुए, यदि मैं निगृहिता Tell God. Okay, well, तो भगवान ने स्वयं को सात के सात बैल थे तो भगवान ने स्वयं को विस्तृत किए आत्मानं सप्तधा कृत्वा सात बैल थे तो भगवान भी सात बने और कुछ ही कम समय में कुछ ही क्षणों में भगवान ने उनको वशीभूत किया उनके सिंह पकड़े और उनके साथ खेल रहे थे मानो कोई खिलौना ही है। पहले कई सारे आए और गए परास्त होके अपमानित और नाराज होके लेकिन अभी आए हैं शूरवीर लीलया मानो कोई लीला भगवान के लिए बाया हाथ का खेल तो बद्वा तान दाम अभी शौरीर भग्न दर्पान हतौजसः वैसे वो बैल भी बैलों में भी घमंड था बैल बड़े घमंडी थे उनको हाँ हम जैसे है कोई है नहीं इतने बलवान बैल तो नंदी बैल नहीं तो प्रभु ने भग्न चूर किया दर्पान और हतौ हत ओ जैसा उनका जो तेज उसको घटाए और व्यकर्षत लीलया उनको घसीट रहे थे उन बैलों को सातों को साथ में ही सातों बैलों को एक ही साथ घसीट रहे और मानो गाय बने थे अभी जैसे गाय घसीटी जाती है गाय जानते हो गाय वो गाय इज अ काउ तो गाय है उसकी बद्धान दामो बालो दारुमयान यथा मानो वो लकड़ी का दारुमय लकड़ी का बने हुए सात बैल थे उनके पीछे पीछे आ रहे तत्प्रीतः सुतां राजा दतो कृष्णाय विस्मितः तां प्रत्यगृह्णात् भगवान विधिवत सदृशिं प्रभु ओके बाजे तो ये भी हो गया प्रीतः कृष्णाय ददो कृष्ण को दे दिए विधिवत ले भीरे परमानंद जातस्य परमोत्सवः ले भीरे प्राप्त हुआ परम आनंद परम उत्सव महान उत्सव वो विवाह का उत्सव दुहितु कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं अपनी पुत्री को कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए तो राजा रानी सब उस नगरी के नागरिक ले भी रे परम आनंदम तो हर्ष उल्लास के साथ उस विवाह महोत्सव में सम्मिलित हुए अब सातवीं है सात हो गए ना अभी छह हो गए अभी सातवां सातवां विवाह अब भद्रा के साथ होगा, भद्रा। ये भी कृष्ण की फुआ थी, मतलब पिता की बहन की बेटी सुताम, ये कैकेयी देश की थी। कन्या का नाम भद्रा, तो कोई ज्यादा समस्या नहीं, कोई झगड़ा रगड़े का यहां कुछ समस्या नहीं। तो इनके साथ भी, भद्रा के साथ भी विवाह हुआ। करीब आओ, वही बैंड बाजा वही है, अभी दूसरा ऑर्डर नहीं करना पड़ा, जल्दी हो गया। और अब आठवां है लक्ष्मणा के साथ भगवान का विवाह। यह संक्षिप्त वर्णन है, वैसे विस्तृत वर्णन ये लक्ष्मणा स्वयं ही द्रौपदी को सुनाती है, तो आगे हम लोग इस वर्ष वो कथा नहीं करेंगे। तो अलग अलग भगवान की रानियां अपनी कहानियां सुनाती है द्रौपदी को, और तुम कैसे मिली, तुम कैसे प्राप्त की प्रभु को, वो सारा अनुभव सुनाती है। तो लक्ष्मणा भी वहाँ विस्तार से अपना सारा चरित्र, संक्षिप्त चरित्र, और विवाह कैसे हुआ, स्वयंवर कैसे संपन्न हुआ, तो ये भी एक श्लोक में ही, मतलब एक वाक्य में ही कहा है। सुताम च मद्राधिपतेर लक्ष्मणाम लक्षणैर्युताम सुलक्षणा, सुलक्ष्मणा अच्छे अच्छे लक्षण वाली सुलक्षणा थी, सुलक्ष्मणा। अंतर ध्यान में आ रहा है, सुलक्षणा थी लक्ष्मणा, से गुण वाली। तो मद्राधिपतिर मतलब मद्रास, मद्रास वहां के राजा की पुत्री, स्वयंवर की तैयारी थी और प्रभु गए वहां। स सुपर्ण सुधाम, जैसे गरुड़ ने स्वर्ग में देवताओं से अमृत छीन लिया था, तो वैसे ही प्रभु ने लक्ष्मणा का हरण किया। और विवाह भी किया। Get ready, sing one song, some song. यह सुखदेव गोस्वामी इस और एक अध्याय हमें पढ़ना है, जिसमें केवल संकेत, इस अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अन्याश्च और भी सहस्रों स्त्रियों के साथ भगवान ने विवाह किया, परम सुंदरी या थी वे, और भौमासुर के बंदी ग्रह से छुड़वा के पहले भौमासुर का वध किए, भौमम हत्वा, और फिर ये चारु दर्शनाह बड़ी सुंदर जिनकी सूरत थी 16,100 राजकुमारियां थी, तो राजघराने की स्त्रियां सुंदर स्वभाव से या रूप से होती ही है, तो ऐसी 16,100 स्त्रियों के साथ भी प्रभु का विवाह हुआ। ये बात जब राजा परीक्षित ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि प्रभु और कुछ अधिक विस्तृत विस्तार से नहीं कहने वाले हैं, तो राजा पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो विस्तार से बताइए यथा कैसे ये भौमासुर कहा था, और तो इसका वर्णन इस अध्याय में आता है, तो हम कुछ थोड़े ही मिनटों के लिए प्रभु का गान श्रवण करेंगे।